नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं जनसत्ता पॉडकास्ट और ये वक्त है जानने का खेल जगत की खबरें। आईपीएल 2023 में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से है। इस सीजन में दोनों टीमों के बीच ये दूसरी टक्कर होगी। इससे पहले राजस्थान ने चेन्नई को उसके होम ग्राउंड पर एक बेहद क्लोज मुकाबले में 3 रन से मात दी थी। आज चेन्नई की नजरें उसी हार का बदला लेने पर रहेंगी। ये मैच जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन पर काबिज है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स तीसरे स्थान पर है। चेन्नई ने अपने आखिरी दोनों मुकाबले जीते हैं, तो वहीं राजस्थान ने अपने आखिरी दोनों मैच गंवाए हैं। इस सीजन में जब दोनों टीमें पहली बार भिड़ी थीं, तो राजस्थान ने भले ही सीएसके को हरा दिया हो, लेकिन ऑल ओवर हेड टू हेड में चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच कुल 27 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 15 में सीएसके तो 12 में राजस्थान की टीम जीती है। आज के मैच से पहले अगर बात करें तो दोनों टीमों के कॉम्बिनेशन की, तो एमएस धोनी के सीएसके में कोई बदलाव होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सीएसके की गाड़ी इस वक्त जीत की पटरी पर रफ्तार में दौड़ रही है। पिछले दो मुकाबलों में सीएसके जिस प्लेइंग 11 के साथ खेली है, आज राजस्थान के खिलाफ भी वही टीम देखने को मिल सकती है। हालांकि बेन स्टोक्स की वापसी पर सभी की नज़रें होंगी, लेकिन उनका खेलना मुश्किल ही नज़र आ रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 21 रन से हराया। नितिश राणा की अगुवाई वाली टीम ने लगातार 4 हार के बाद जीत दर्ज की। कोलकाता ने RRR यानी जेसन रॉय, नितिश राणा और रिंकू सिंह की शानदार बल्लेबाजी के दम पर 20 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन का स्कोर खड़ा किया। RCB की टीम इस सीजन में KGF विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फॉफ डु प्लेसिस पर ज़्यादा ही निर्भर दिखाई दे रही है। इस मैच में फॉफ और मैक्सवेल फेल रहे, नतीजा टीम को हार का सामना करना पड़ा। विराट कोहली ने 37 गेंद पर 6 चौके की मदद से 54 रन की पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से कुछ साथ नहीं मिला। चिन्नास्वामी स्टेडियम में KKR की ये लगातार 5वीं जीत थी। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से ओपनर जेसन रॉय ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंद पर 4 चौके और 5 छक्के की मदद से 56 रन बनाए। उन्होंने 193.10 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर बड़े स्कोर की नींव रखी। इसके अलावा नितिश राणा ने 21 गेंद पर 3 चौके और 4 छक्के की मदद से 48 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 228.57 का रहा। वहीं रिंकू सिंह ने 10 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन बनाए। उन्होंने 180 के स्ट्राइक से रन बनाए। इसके अलावा डेविड डिविसे ने 3 गेंद पर 2 छक्के की मदद से 12 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 400 का रहा। कोलकाता की टीम ने 5 विकेट पर 200 रन बनाए। लाल बजरी पर खेले जाने वाले टेनिस का आधा रास्ता तय हो चुका है और अब इस तरह की सतह पर खेले जाने वाला सबसे बड़ा टेनिस टूर्नामेंट शुरू होने में महज 1 महीने भर का वक्त रह गया है। बात हो रही है फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट की, जो कि 28 मई से शुरू होने वाला है। जब लाल बजरी की बात होती है तो जहन में जिस दिग्गज का नाम सबसे ऊपर आता है वो राफेल नडाल है। नडाल और लाल बजरी के कोर्ट रोलैंड गेरोस में लगभग अटूट बंधन है। नडाल लाल बजरी के कद्दावर खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके प्रशंसक और समर्थक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके पसंदीदा नडाल फ्रेंच ओपन में उतर पाएंगे, और उतरे तो क्या खिताबी जीत का सहरा बांध पाएंगे। दरअसल नडाल इस साल के शुरू से ही गंभीर चोटों से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके प्रतिद्वंदी नोवाक जोकोविच के समर्थक भी अपने प्रिय खिलाड़ी की फिटनेस को लेकर फिक्रमंद हैं। क्ले के निर्विवाद सम्राट नडाल ने जनवरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बाद से कोई मैच नहीं खेला है, क्योंकि वो कोहले की चोट से परेशान हैं। इस चोट के ठीक होने में अमूमन 6 से 8 सप्ताह लगने थे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लगता कि तय समय पर वो स्वस्थ हो पाएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक प्राथमिकी यानी FIR नहीं दर्ज होने को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी कटघरे में खड़ा किया। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी सवाल किया। साक्षी मलिक ने कहा, मैं स्मृति ईरानी से पूछना चाहती हूं कि वो अब चुप क्यों हैं? 4 दिन हो गए हैं हम सड़क पर सो रहे हैं, मच्छरों के काटने को सह रहे हैं, हमें यानी दिल्ली पुलिस द्वारा खाना पकाने और ट्रेनिंग करने की मंजूरी नहीं दी जा रही है, तो आप चुप क्यों हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आप यहां आओ, हमारी बात सुनो और हमारा समर्थन करो। साक्षी को लगता है कि शायद उनकी बात प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच रही है। साक्षी मलिक ने कहा, शायद हमारी सच्चाई उन तक नहीं पहुंच रही है, इसीलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम उन्हें हमारे मुद्दों से अवगत करवाना चाहते हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है। अगले बुलेटिन तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।